आर्य शत्रु तो मन की भावना से होता है। भंते इस समय मेरे मन की अवस्था तत्व ज्ञान का तर्क ग्रहण करने योग्य नहीं। मैं जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष की बात कर रहा हूँ। कुछ समय चिंता में माथे पर हाथ रखकर पृथ्वीसेन ने निवेदन किया, भंते मुझे संघाराम से बाहर जाने की अनुमति दें। स्थिवर की शांत मुद्रा में अंतर न आया। आर्य जीवन की रक्षा के लिए विषय में ही मैं कह रहा हूँ। आर्य की विपत्ति में जानकर रक्तपात निवारण के लिए संघाराम में स्थान दिया था, इसलिए नहीं कि आर्य रक्तपात करने और विप्रजनक स्थिति उत्पन्न करने के अवसर की प्रतीक्षा करें। प्रतिसेन अवाक स्थिवर की अविचलित मुस्कान की ओर देखता रह गया। कल्पना में उसे अतीत की घटनाएं दिखाई देने लगी, जब घायल होकर मृत्यु और जीवन के बीच झूलते उसके शरीर को स्थिवर चिवुक ने अपने कृपालु करों से प्राण दान दिया था। उस समय भी स्थिवर के मुख पर यही मुस्कान थी, उनका स्वर भी यही था। स्थिवर ने आश्वासन दिया था, आर्य शक्ति रहते तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। पृथ्वीसेन के निरुत्तर रहने पर भी स्थिवर ने एक श्रमण को पुकार कर कुछ फल उपस्थित करने का आदेश दिया। पृथ्वीसेन ने अत्यंत अनिच्छा होने पर भी स्थिवर का आदेश आग्रह न कर सकने के कारण कुछ फलाहार किया। स्थिवर अनेक रोगियों के सेवा उपचार के लिए दिन के समय नगर के अनेक भागों में जाते थे। उन्होंने पृथ्वीसेन को नगर की अवस्था सुनाई। नगर में रक्तपात विशेष न हुआ था, परंतु संपूर्ण शासन व्यवस्था पलट गई थी। पृथ्वीसेन के सहयोगी और मित्र वर्ग उनके सहायता कर सकने योग्य अवस्था में न थे। पृथ्वीसेन का उनके यहाँ जाना पृथ्वीसेन और स्वयं उनके लिए भी विपत्ति का कारण होता। रुद्रधीर के चर प्रत्येक पथ वीथी और उपांत में पृथ्वीसेन की खोज कर विफल हो गए थे। उनका अनुमान था पृथ्वीसेन षड्यंत्र की गंध पाकर पहले ही मल्लिका प्रसाद से निकलकर नगर की प्राचीर लांग गया है। उन्हें शंका थी पृथ्वीसेन छदम वेश में दारवराज से छीने हुए अपने अग्रहार के ग्रामों की ओर गया है। रुद्रधीर और सामंत सावर्थ के चर उसी ओर उसकी खोज कर रहे थे। पृथ्वीसेन ने स्थिवर की बात से विशेष संतावना न पाकर असंतोष से प्रश्न किया, भंते क्या मैं अपना शेष जीवन आखेटक के हाथ से भागे हुए पंगु जी की भांति यहाँ छद्म स्थान में छिपकर दैन्य और कातरता में व्यतीत करूंगा? कातरता और निरुत्साह वीर पुरुष को शोभा नहीं देते आर्य, स्थिवर ने उत्तर दिया। भंते ऐसी अवस्था में रक्तपात और हिंसा की आशंका से मैं किस प्रकार निष्क्रिय बैठा रहूं? शत्रु से संग्राम करने के अतिरिक्त मेरे लिए उपाय ही क्या? पृथ्वीसेन ने अधीर स्वर में पुनः अनुनय किया, आर्य रक्तपात शत्रुओं को पराजित करने का सफल उपाय नहीं। शस्त्र द्वारा सात शत्रु का वध किया जा सकता है, उसे कुछ काल के लिए वश किया जा सकता है, परंतु विजय नहीं किया जा सकता। जिसका वध हो गया, जो रहा ही नहीं, उसे विजय नहीं किया जा सकता। मनुष्य मृत्यु की अपेक्षा पराभव को केवल कायरता और प्रतिहिंसा की भावना से ही स्वीकार करता है। दमनकारी शत्रु की शक्ति क्षय होते ही पराजित हुआ व्यक्ति पुनः प्रतिकार का यत्न करता है। आर्य ऐसे दमन भी विजय नहीं। आर्य संसार की विजय केवल द्वेष और प्रतिकार की नई पौधे का बीज मात्र होती है। आर्य विचारें शत्रु के मृतक शरीर में कोई भय नहीं करता। आर्य शत्रुता शरीर करता है या मन की भावना शत्रुता करती है? स्थिवर ने प्रश्न किया। मन की भावना भंते, क्षीण स्वर में पृथ्वीसेन ने उत्तर दिया। तो फिर आर्य विजय शत्रु का शरीर वश करने में नहीं, उसके मन की भावना को वश करने में है। जैसे तथागत ने देवदत्त के मन को, धर्मघोष ने सम्राट अशोक के मन को और अरहत नागसेन ने सम्राट मिलिंद के मन को विजय किया था, उसी प्रकार आर्य भी आचार्य रुद्रधीर की विजय करें। स्थिवर मौन हो सस्मृत दृष्टि से पृथ्वीसेन की ओर देखते रहे। पृथ्वीसेन कभी स्थिवर के शांत सस्मित मुख की ओर देखता और कभी गिरवा झुकाए उनके शब्दों को सुनता रहा। स्थिवर कहते गए, आर्य मनुष्य के शत्रु कितने हैं, कौन हैं, कहाँ हैं, मनुष्य उस सबको नहीं जानता, जान भी नहीं सकता। मनुष्य शस्त्र से कितने शत्रुओं का हनन करेगा? एक दिन सांगल की प्रजा आर्य को पथ पर अश्वारूढ़ देखकर जयघोष करती थी, आज आर्य को इस अवस्था में देखकर प्रजाजन उत्साहित न होंगे। क्या इसलिए कि वे आर्य के शत्रु हो गए? आर्य ने उनकी क्या हानि की थी? आर्य के दारव विजय के समय केन्द्रश के अनेक सैनिकों का हनन किया, क्या वे आर्य के शत्रु थे? आर्य ने कभी उन्हें देखा था? आर्य की उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस शत्रुता का कारण केवल मन की भावना और शत्रुता का विश्वास था। आर्य शत्रुता मन का विषय है। आर्य जो शत्रु से पराजय स्वीकार करता है और जो शत्रु को मारने के लिए जाता है, वे दोनों ही शत्रु के भय के कारण ऐसा करते हैं। आचार्य रुद्रधीर आर्य के प्राणों के ग्राहक इसलिए हैं कि उन्हें अपनी स्थिति और प्राणों के लिए आर्य से भय है। वे आर्य के भय से कांप रहे हैं। आर्य जो भय करता है, त्रास मानता है, वह वीर नहीं। वीर और साहसी वही है जिसे किसी का भय नहीं, किसी का त्रास नहीं। आर्य जो तुमसे भय करता है, उससे तुम भी भय करते हो। शक्तिमान का भय सुषुप्त है, शक्तिहीन का जागृत। भय का कारण होने से भय अवश्य होगा। निर्भय वही है जो भय के कारणों से मुक्त है। तुम्हारी शक्ति से यदि तुम्हारा भयभीत है, तो उसका भयभीत रहना तुम्हारे भय का गुप्त बीज है। अनुकूल भूमि और ऋतु पाने से भय का यह बीज किसी भी समय अंकुरित हो सकता है। आर्य, ऐसी अवस्था में शक्ति अभय का नहीं, भय का ही कारण है, अन्य के भय का और अपने भय का भी। ऐसी इस शक्ति सुख का हेतु नहीं हो सकती। आर्य, दुख के साधन और कारण एकत्र करके जो मनुष्य सुख की आशा करता है, वह भ्रम के मार्ग का पथिक है। सुख की ऐसी इच्छा दरिद्र के मनोरथ की भांति केवल क्लेश का हेतु होती है। स्थिवर चूक प्रातः मध्यान्ह अथवा संध्या समय विच्छाटन और रोगियों की उपचार सेवा से अवकाश पाने पर पुत्रसेन के समीप आकर वार्तालाप करने लगते। पूरा एक पक्ष व्यतीत होने से पूर्व ही विग्रह के लिए संघाराम से बाहर जाने की इच्छा पुत्रसेन ने त्याग दी। वह स्थिवर से अनासक्ति और चिरंतर सुख के विषय में प्रश्न कर उनके उत्तरों को मौन रहकर विचारता रहता। उसके मुख और व्यवहार से व्यथा और चिंता की मुद्रा जाती रही। उसके लिए क्लेश और बाधा का कारण न था। वह नेत्रों में उत्सुकता लिए बद्ध कर होकर आदर से उपदेश सुनता। एक संध्या स्थिवर के उपदेश के पश्चात पुत्रसेन ने अन्वय की। भन्ते, सेवक सौर भौम मौत्री की भावना ग्रहण कर चिरंतन सुख के मार्ग का पथिक बनना चाहता है। भन्ते, सेवक को तथागत के धर्म का उपदेश दें, तीस शरण में ग्रहण करें। स्मित वंदन स्थिर ने उत्तर दिया, आर्य, उसका भी समय आएगा। जो सुख अपरिग्रह के मार्ग पर किसी से कुछ छीने बिना प्राप्त होता है, उससे मनुष्य का कोई वंचित नहीं रख सकता। आयुष्मान, उसका भी समय आएगा। पुत्रसेन स्वेच्छा से ही भिक्षुओं के विनय और शील का पालन करने लगा। वैधवर स्थिवर चिवुक सांगल के विहारों और भिक्षु संघ के नायक स्थिवर अरहत धर्मरक्षित का संदेश पाकर मध्यांतर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। आर्यहत संघ स्थिवर धर्मरक्षित अभिधर्म पर आए संकट के कारण अत्यंत चिंतित थे। नगर में दुंदिविनाद द्वारा गणपति सामंत श्रेष्ठ श्रीदार व सावर्थ की आज्ञा का समाचार पाकर वे उद्विग्न हो गए। गणपति की विज्ञप्ति थी, जो नागरिक वर्णाश्रम धर्मघातक दासपुत्र प्रसेन को मृत अथवा जीवित अवस्था में सांगल के राजपुरुषों को सौंपेगा, वह गणराज कोष से 500 स्वर्ण मुद्रा और 1 ग्राम के अग्रहार का अधिकारी होगा। जो नागरिक गणराज के अनुशासन की अवज्ञा कर धर्मघातक दासपुत्र प्रसेन को शरण देगा, वह धर्मस्थान से मृत्युदंड का अधिकारी होगा। स्थिवर चूक ने विनय के नियमानुसार 5 अंगों से प्रमाण कर संघवर स्थिवर धर्मरक्षित की वंदना की। स्थिवर ने कृपा हस्त उठाकर स्थिवर चुवक के स्वस्थ और आरोग्य की कामना की। स्थिवर चुवक ने जानु पृथ्वी पर टिका उनके आदेश के लिए प्रार्थना की। चुवक ने संघ स्थिवर के आदेश से कुशासन ग्रहण किया और संघ स्थिवर की चिंता के कारण उनका अनुमान करके भी उनके बोलने की प्रतीक्षा में मौन रहे। संघ स्थिवर ने मन की उद्विग्नता का कारण संक्षेप में कहा, आयुष्मान, अभिधर्म पर उपस्थित संकट से अवगत हैं। भन्ते, चुवक ने उत्तर दिया, धर्म पर संकट नहीं आता, केवल धर्म के प्रति विश्वास प्रकट करने वाले जन भयभीत होकर संकट अनुभव करते हैं। धर्म कभी अधिक मनुष्यों के हृदय और विश्वास में स्थान पाता है और कभी मनुष्य के ऐसी भिक्षु की धारणा है। स्थिर चूक के उत्तर पर मन में विचार कर संघ स्थिर बोले, आयुष्मान, मेरे मुख से न कहने पर भी मेरे मन में उपस्थित चिंता के प्रसंग से अवगत हैं। आयुष्मान ने राज की विज्ञप्ति का समाचार सुना है। भन्ते की चिंता का कारण मैंने अनुमान किया है, विज्ञप्ति मैंने सुनी है। चिवक ने स्वीकार किया, राजकोष के पात्र प्रतिसेन को बुद्ध रक्षित संघाराम में शरण पाना इस संकटमय परिस्थिति में अभिधर्म और संघ के लिए आपत्ति का कारण है। रुद्रधीर धर्म का द्वेषी है, आयुष्मान जानते हैं। भन्ते, धर्म की रक्षा के लिए शरणागत को शरण देना आवश्यक हुआ। संघ शरणागत को शरण दे, ऐसा अभिधर्म का आदेश है। परंतु आयुष्मान, संघ स्थिवर के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई। संघ और धर्म की रक्षा के लिए इस समय दूसरा कर्तव्य है। जैसे उपोषत श्रेय होने पर भी रुग्ण शरीर उपासक के लिए उपोषत उचित नहीं है, यदि संघ स्थिवर की आज्ञा हो तो भिक्षुक निवेदन करे। चूक ने कर जोड़कर अरहत धर्म रक्षित की ओर देखा। संघ स्त्री के सिर झुकाकर अनुमति देने पर शिविक बोले, भंते, जैसे जल का विशेष उपयोग तृषा अनुभव होने पर होता है, उसी प्रकार धर्म का पालन भी संकट के समय ही महत्व रखता है। परंतु संघ की रक्षा एक साधारण जन की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। धर्मरक्षित ने चिबुक के नेत्रों को देखकर चेतावनी दी, भंते, बोधिसत्व ने शरणागत अकिंचन पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस अर्पण किया था। उनके शरीर का महत्व उनके बुद्धित्व और धर्म अकिंचन शरणागत पक्षी के लिए शरीर देने से ही हुआ। भंते, भिक्षु का बोध आदेश देता है कि धर्म की रक्षा और संघ के धर्म की रक्षा का महत्व शरणागत को शरण देने में है। इससे संघ का शरीर संकट अनुभव करने पर भी धर्म की वृद्धि करेगा और शरणागत को त्याग कर संघ के शरीर रक्षा के मोह से धर्म की हानि होगी। बहुत समय तक विचार में मौन रहकर संघ स्थिर ने स्थिर चूक को संबोधन किया। आयुष्मान, विनय का उपदेश है कि जब भिक्षुओं में परस्पर विचार और मत का भेद हो, मार्ग का निर्णय संघ सभा करे। परंतु आयुष्मान, उग्र संकट के कारण यह रहस्य संघ सभा में प्रकट करना भी संघ के लिए आपत्ति का हेतु होगा। आयुष्मान का की धर्म भावना का आदर कर संघ स्थिर ने अपना विचार और आदेश कह दिया। स्थिर चुबक मस्तक झुकाए बैठे रहे और फिर संघ नायक को विनयपूर्वक प्रणाम कर आज्ञा लेकर बुद्ध रक्षित संघाराम में लौट आए। स्थिर चुबक का करुणा और मैत्री की भावना से सदा प्रसन्न मुख गंभीर हो गया। द्वंद्व से मुक्त उनके मन में घोर द्वंद्व उत्पन्न हो गया। संघ स्थिर की आज्ञा की अवज्ञा कर वे विनय के नियम का उल्लंघन कर किस प्रकार करें, वे बोधिसत्व के उपदेश के विरुद्ध आचरण किस प्रकार करें। चित्त स्थिर कर कर्तव्य मार्ग का निश्चय करने के लिए वे रात्रि के 3 प्रहर बीत कर तक तथागत के बिंब के सम्मुख बैठकर विचार करते रहे। स्थिवर ने विचार से तथागत की धर्म भावना मन में ग्रहण कर मार्ग का निर्देश पाया। धृतदीप की ज्योति से प्रतिभासित तथागत की प्रतिभा से उज्ज्वल मुख मंडल की ओर दृष्टि लगाया उनका मुख पुनः चिंता मुक्त होकर प्रसन्नता से खिल उठा। तथागत के बिंब के सम्मुख पृथ्वी पर मस्तक में रखे उन्होंने प्रणाम किया। चिबुक सूर्योदय से पूर्व ही पृथ्वीसेन की कृपा से सम्मुख उपस्थित हुए। पृथ्वीसेन विचारमग्न था। सस्मित वंदन स्थिर के सम्मुख खड़े देखकर उसने आदर से आसन छोड़कर श्रद्धा से प्रणाम किया। मन में कोई दुविधा है आयुष्मान? कृपा हस्त उठकर स्थिर ने संबोधन किया, नहीं भंते। भंते के उपदेश से उपासक दुविधा से मुक्त हुआ। नतमस्तक पृथ्वीसेन ने निवेदन किया, आयुष्मान, कोई भय शेष है? नहीं भंते। आयुष्मान, कोई तुम्हारा शत्रु है? भंते, की दया से शत्रु रहित हुआ हूँ। आयुष्मान, आचार्य रुद्र धीर के द्वार पर भिक्षा के लिए चलेंगे? भंते, आचार्य रुद्र धीर के द्वार पर अथवा और भी जहाँ आदेश हो। आयुष्मान, तथागत की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण ग्रहण करने के प्रयोजन से प्रवज्ञा दान के लिए संघ से प्रार्थना करते हो? भंते, मैं प्रवज्ञा की भिक्षा के लिए संघ से प्रार्थना करता हूँ। आयुष्मान की इच्छा पूर्ण होगी। आयुष्मान, प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो। स्थिर चुवक ने बुद्ध रक्षित संघाराम के भिक्षुओं को एक नवीन श्रमण को तुरंत प्रवज्ञा दान देने के आयोजन के लिए आदेश दिया। पृथ्वीसेन मध्यान्ह से पूर्व ही मुंडित सिर कासाय चिविर धारण किए और हाथ में भिक्षा पात्र लिए स्थिर वैद्य चिविक के साथ भिक्षा के लिए बुद्ध रक्षित संघाराम के द्वार से निकला। वैद्य वर्चुक एक अन्य भिक्षु सहित वाणाश्रम धर्म के व्यवस्थापक गण परिषद के संवाहक आचार्य रुद्रधीर के प्रसाद के सशस्त्र सैनिकों से रक्षित सिंह द्वार पर उपस्थित हुए। प्रतिहारी द्वारपाल ने निवेदन किया, महंते, भंडार गृह से भिक्षा आने तक प्रतीक्षा करें। सस्मित वंदन स्थिर ने द्वारपाल को उत्तर दिया, भद्र, आज आचार्य के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करने की इच्छा है। महंते, आचार्य की आज्ञा है कि उनकी अनुमति पाए बिना प्रसाद में प्रवेश निषेध है। प्रतिहारी ने क्षमा याचना की, भद्र, आचार्य से भिक्षुक चुवक और उसके साथ ही भिक्षु का आशीर्वाद निवेदन करें। स्थिवर ने मुस्कुराकर आग्रह किया। अस्थान से आदेश होने पर स्थिवर चुवक अपने साथी भिक्षु को लिए सशस्त्र प्रतिहारी सहित आचार्य रुद्रधीर के आस्थान में प्रविष्ट हुए। आचार्य अनेक ताड़पत्र और भोजपत्र सम्मुख रखे लेखकों से अनेक निर्देश लिपिबद्ध करवा रहे थे। भिक्षुओं को सम्मुख देखकर आचार्य ने आसन से उठकर करबद्ध होकर स्थिवर चुवक को संबोधन किया, आचार्य प्रवर्धन पात्य आचार्य रुद्रधीर मद्र के सर्वश्रेष्ठ वैद्य ज्ञानी स्थिर चुक की वंदना करता है। स्थिर के साथी भिक्षुक की ओर भी नमस्कार कर आचार्य ने कहा, अपरिचित श्रवण भी गृहस्थ की वंदना स्वीकार करें। दोनों भिक्षुओं को आसन ग्रहण कर लेने पर आचार्य स्वयं भी बैठे और निवेदन किया, स्थिर सेवा भिक्षा ही है। स्थिर बोले, आचार्य अपने मन की कामना कहें। भंते का आशीर्वाद है, शरीर रोगग्रस्त होने पर वैद्यवर की कृपा की आवश्यकता होगी। मुस्कुराकर आचार्य ने पुनः हाथ जोड़े। स्थिर भी मुस्कुराए, मन का क्लेश हो सकता है आर्य। भंते, जिसने स्वयं संसार त्याग दिया है, परिहास में आचार्य ने उत्तर में प्रश्न किया, वह दूसरे को क्या देगा? स्थिर की मुस्कान म्लान न हुई। उन्होंने उत्तर दिया, आचार्य ज्ञानी हैं, पाए बिना किसी वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता, संसार का कोई पा नहीं सकता इसलिए उसे कोई त्याग नहीं सकता। परिग्रह और त्याग दोनों का प्रयोजन संतोष है। जब तक मन में चिंता है संतोष नहीं। स्थिवर का वचन सत्य है, आचार्य ने स्वीकार किया। कर्मकांडी और संसारी के लिए सदा ही असंतोष के अनेक कारण हैं, अनेक चिंताएं हैं। स्थिवर के समीप आसन पर बैठा भिक्षु बोला, अनेक चिंताओं में एक चिंता से आचार्य को मुक्ति देने के लिए भिक्षुक उपस्थित हुआ है। भिक्षु का सर सुनकर ग्रीवा उठा, विस्मय से नेत्र फैलाकर आचार्य ने बोलते हुए भिक्षु की ओर देखा। उनके नेत्र और ओष्ठ खुले ही रह गए। भिक्षु बोला, मैं भिक्षु प्रतिसेन सार्वभौम मैत्री का सुख पाकर आचार्य के प्रति सत्यता के भाव से रहित होकर भय और चिंता से मुक्त हुआ हूँ। आचार्य को भी अपने कारण भय और चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आचार्य के सम्मुख उनके आस्थान पर उनके हाथों से मैं उपस्थित हूँ। प्रतिसेन को पाकर भिक्षु की सार्वभौम मैत्री के सुख की भिक्षा दें। भिक्षु ने आत्मसमर्पण के भाव से दोनों हाथ फैला दिए। कुछ कहने के लिए खुले आचार्य के ओष्ठ गहरा निश्वास छोड़कर चुप रह गए। वे गुरुवा झुकाए मौन बैठे रहे। अनेक क्षण पश्चात आलिंद में पहरी द्वारा मध्यान्ह का घड़ियाल बजाने जाने से शब्द ने उन्हें सजग किया। अभ्यागत भिक्षुओं को संबोधित कर उन्होंने निवेदन किया, भिक्षुवर अन्न ग्रहण करें। नीतिविद आचार्य जानते हैं कि विनय के अनुशासन मध्योत्तर में भिक्षु का अन्न ग्रहण करना उचित नहीं। चूक ने निर्दंत मुस्कान से उत्तर दिया। आचार्य ने घर आए भिक्षुओं को निराहार रखने के प्रताप से लज्जा अनुभव कर क्षमा की। भंते, गृहस्थ अपनी उपेक्षा के लिए भिक्षुओं से क्षमा चाहता है। आर्य, इसके लिए चिंता का कारण नहीं। स्थिवर ने आश्वासन दिया। स्थानागार में बहुत समय तक स्तब्धता छाई रही। उसके पश्चात स्थिवर उठ खड़े हुए। आज्ञा लेकर और आशीर्वाद देकर वे प्रतुसेन सहित सिंह द्वार की ओर चले जा रहे थे। आचार्य रुद्रधीर गिरवा झुकाए चिंतामग्न बैठे रहे। आचार्य को चिंतित देखकर अनुज वसुधीर ने निवेदन किया, आर्य, शत्रु के दैन स्वीकार कर लेने से युद्ध का अंत हो जाता है, यह वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा है। रुद्रधीर ने अनुज की ओर देखा, परंतु उनकी दृष्टि में संतोष न था।